क्रिटिकल सिचुएशन। वंशिका और राधिका को इस अंदाज में देखकर वीर की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके चेहरे पर जबरदस्त चमक आ गई, जो साफ बता रही थी वो खुद के जज्बात को रोक नहीं पा रहा, मानो जैसे उसके भीतर का राक्षस लार टपकाते हुए बस उन्हें देखता रह गया हो। अब आगे। वहीं अपने प्लान के मुताबिक रौनक मोबाइल लेकर छुप कर बैठ गई थी, ताकि जब वीर गंदी नजरों से वंशिका और राधिका को देखे या उनके साथ कोई घटिया हरकत करने की कोशिश करे, तब तुरंत ही रौनक उसका वीडियो बना ले और फिर वो वीडियो बनाकर अरमान को दिखा देगी और अरमान वीर को घर से बाहर निकाल देगा। इस सोच के साथ रौनक फोन लेकर रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ गई थी। वहीं रश्मि, जो कि रौनक की फरमाइश पर उसके लिए सूजी का हलवा बना रही थी, अब जैसे ही उसने वंशिका और राधिका को साड़ी में अचानक देखा तो वैसे ही वो थोड़ा सा चौंक गई। लेकिन जैसे ही उसने रौनक के हाथों में फोन और सामने वीर को आते हुए देखा तो रश्मि को समझते देर नहीं लगी कि जरूर इन लड़कियों ने कोई ना कोई चाल चली है। वो तुरंत अपने माथे पर थपथपाते हुए खुद से फुसफुसाई, ये लड़कियां कभी नहीं सुधरने वाली हैं। मैंने कहा था कि इन्हें वीर के बारे में ज्यादा ना सोचे, उसे यहां रहने का एक मौका दे, लेकिन ये लड़कियां नहीं सुधरने वाली। अब ये जानबूझकर वीर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। वहीं वीर को अपनी ओर गौर से देखता हुआ देखकर वंशिका और राधिका ने एक दूसरे को देखते हुए चुपके से आंख मारी। कहीं ना कहीं उन्हें लगा रहा था कि वीर अब उनकी खूबसूरती में पूरी तरह से फिदा हो चुका है और अब वो जरूर उनके साथ ऐसी वैसी कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करेगा। यही सोचते हुए वंशिका जानबूझकर वीर के पास जाने लगी। वहीं वीर, जिसकी आंखों में उन दोनों के लिए हवस साफ छलक रही थी, उसने जैसे तैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। तुरंत ही उन दोनों को करीब से जाते हुए देखकर उसने अपनी नज़र झुका ली और एकदम से अपने हाथ जोड़कर वंशिका और राधिका को बारी बारी से प्रणाम किया। भाभी जी, आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों मुझे अपना छोटा देवर समझेंगी। इतना बोलकर उसने बड़े अदब से दोनों के सामने हाथ जोड़ लिया और मौके का फायदा उठाकर चुपके से वहां से खिसक गया। जब तक वंशिका और राधिका कुछ समझ पाती, तब तक वीर उनकी नज़रों के सामने से गायब हो चुका था। अब वीर को ऐसे जाता हुआ देखकर वंशिका और राधिका दोनों ही एकदम से चिढ़कर अपने पैर पटक लिए थे। कहां तो वो दोनों वो इतनी तैयार होकर आई थी कि उनकी खूबसूरती देखकर वीर जरूर उनके साथ छेड़खानी करेगा, लेकिन ये क्या, वो तो भाभी जी करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट देकर वहां से भाग गया। ये देखकर तो दोनों चिढ़ गईं और पैर पटक कर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। वहीं रौनक उनकी ये हालत देखकर पेट पकड़कर हंसने लगी और अगले ही पल वो बेपरवाह अंदाज में बोली, ये क्या हुआ, ये फट्टू तो तुम दोनों को छेड़े बना ही भाग गया। अब क्या करें, कैसे छिड़ाएं इसे, इस बेवकूफ को क्या लड़कियां छेड़ना नहीं आता। जैसे ही रौनक ने टपोरी अंदाज में ये कहा तो ये सुनकर वंशिका और राधिका दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब उन्हें हंसता हुआ देखकर वीर, जो कि एक कोने के साइड में छुपकर उन्हें गंदी नजरों से देख रहा था, वो थोड़े शैतानी अंदाज में खुद से बड़बड़ाया, भले ही इस वक्त मैं तुम लोगों को नहीं छेड़ सकता, लेकिन तुम दोनों ने अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाकर मुझे इतना तो बता दिया है कि इस घर में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। बस एक बार मैं इस मेंशन का मालिक बन जाऊं और सब कुछ अपने हाथ में ले लूं, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि वीर रायचंद क्या चीज है। वीर की ये बात गंदी और घिनौनी लग रही थी। अब हलवे का एक थाल लेकर रश्मि, रौनक, राधिका और वंशिका के पास आ गई। वहीं नानीमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, क्योंकि वसुंधरा को देखते ही उनका सर दर्द होने लगा था और फिलहाल वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहती थी। रश्मि ने उन्हें दवाई देकर सुला दिया था, क्योंकि वो नानीमा को बीमार किसी भी कीमत पर नहीं देख सकती थी, उनका ठीक होना उसके लिए बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद रश्मि हल्की मुस्कान दबाए चारों के लिए हलवा लेकर आती है, लेकिन हलवे की खुशबू सूख कर तब तक वसुंधरा भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसने कपड़े बदल लिए थे और एकदम चकाचक बढ़िया से कपड़ों में वो वहां मौजूद थी, मानो जैसे एक बार फिर से वो अमीर हो गई हों। वसुंधरा को देखकर उन चारों ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और आपस में हलवा खाकर इधर उधर की बातें करने लगी। वहीं वसुंधरा रश्मि के पास आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बेटी मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी थोड़ा हलवा मिल सकता है। ये सुनकर रश्मि का मन तो हुआ कि वो उसे हलवा दे दे, लेकिन रौनक तपाक से चिल्लाई, ओ हेलो आंटी जी, हम यहाँ आपके नौकर थोड़ी हैं जो कि आपके लिए हलवा बनाएंगे, वो सामने किचन है, जाओ जाकर अपने लिए हलवा खुद बना लो और हो सके तो अपने उस बंदर बेटे को भी दे देना, ठीक है। जैसे ही रौनक ने टपोरी अंदाज में ये कहा, वसुंधरा अंदर तक तिलमिला गई, लेकिन फिलहाल हल्की सी मुस्कान के साथ वो कोमलता से बोली, ठीक है बेटा, मैं खुद बना लूंगी, क्योंकि इस वक्त वो किसी को गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। आखिरकार वसुंधरा को अपना कैरेक्टर पूरी तरह निभाना था, वो जानती थी कि गुस्सा दिखाकर अपने लिए इस मेंशन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं करवा सकती हैं, और वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि ये लड़कियां उसे किसी भी हाल में यहाँ टिकने नहीं देंगी। लेकिन वसुंधरा एक चालाक औरत थी, वो इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जा सकती थी। फिलहाल जल्दी ही वसुंधरा किचन में चली गई। वहीं दादाजी, जो कि इस वक्त अभिमान जी के साथ मौजूद थे, उनका हाथ पकड़कर उन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो।
अरमान बहुत जल्द उनके पास वापस आ जाएगा। ये बोलते हुए दादाजी ने तुरंत आहान को फोन मिला दिया था ताकि वो अरमान के बारे में पता लगा सकें कि आखिरकार अरमान फार्म हाउस पर कर क्या रहा है और कब तक आएगा। दादाजी को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि कहीं अपने गुस्से और नफरत के चक्कर में वो खुद को एक बार फिर सजा देना शुरू न कर दे, जिस तरह से वो पहले भी अपने ऊपर कोड़े बरसाया करता था। इस तरह से वो खुद को फिर से जख्मी न कर दे, इसलिए दादाजी को अरमान की चिंता सता रही थी और वो आहान से अरमान का हालचाल जानना चाहते थे। वहीं आहान इस वक्त ध्रुव के साथ मौजूद था और ध्रुव उसे संभाल रहा था। ध्रुव ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि आखिरकार उस रिपोर्ट्स में क्या आया है। वो तो बस रो ही रहा था, उसकी आंखों में आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे। अब अचानक से दादाजी का फोन आने पर आहान एकदम से ठिठक गया और थोड़ा सा साइड में हो गया, फिर अपनी आवाज शांत रखते हुए बोला, जी दादाजी, क्या बात है, आपने फोन क्यों किया, घर पर सब ठीक है ना? कहीं ना कहीं आहान को ये चिंता सता रही थी कि घर पर वसुंधरा और वीर मौजूद हैं तो कहीं उन्होंने कोई बवाल तो नहीं कर दिया, इसलिए उसने सामने से सवाल पूछा, घर पर सब ठीक है ना? आहान की बात सुनते ही दादाजी अगले ही पल बेफिक्री से बोले, बेटा घर पर तो सब ठीक है, लेकिन अरमान का कुछ पता चला क्या? अरमान कहाँ है और कब तक आएगा? आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? अगर उसे वसुंधरा वीर का यहाँ आना पसंद नहीं है तो हम वसुंधरा को यहाँ से वापस भेज देते हैं, वैसे भी अरमान से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं है। इतना सुनकर आहान ने एक पल के लिए आह भरी और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए धीरे से बोला, दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भैया को लेकर जल्दी ही घर आ जाऊंगा और आप डैडी से बोलिए कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आहान अभिमान जी को डैडी कहकर बुलाया करता था। हालांकि आहान अभिमान से इमोशनली अटैच नहीं हुआ था, लेकिन अभिमान जी भी उसे अपने बेटे की तरह ही मानते थे।
फिलहाल आहान ने ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फोन काट दिया, क्योंकि अगर दादाजी ने कुछ और पूछ लिया तो वो उनके सामने फूट फूट कर रो देता और फिर दादाजी भी परेशान हो जाते। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर से ध्रुव के पास तेज कदमों से चला आया। अब तक आकाश और सुमित ध्रुव की खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आकाश ने उसके कंधों को पकड़कर सवालिया नजरों से देख के पूछा, क्या बात है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वहीं मारिया और टाइगर भी सीरियस चेहरे के साथ मौजूद थे। टाइगर लगातार इमोशनल होकर एक दीवार पर मुक्के बरसाए जा रहा था, जिसे दीवार में दरारें भी आना शुरू हो गई थीं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब मारिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और सॉफ्ट वॉइस में उसे समझाया, इस वक्त किंग को हमारी जरूरत है, हम अपने आप को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किंग का ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर पॉसिबल हो तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को यहां ले आओ, लेकिन किंग को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही मारिया ने टाइगर को ये इंस्ट्रक्शन दिया, टाइगर जल्दी बाहर तरफ कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी उसे ध्रुव की गहरी और कड़क आवाज सुनाई दी, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अरमान भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। ध्रुव के मुंह से ये सुनकर उनका दिल सुकून से भर आया। टाइगर, आहान और बाकी सबने राहत की सांस ली और उनके होंठों पर अपने आप ही एक हल्की स्माइल आ गई। लेकिन तभी एक बात आकाश के दिमाग में बिजली की तरह चमकी और अगले ही पल उसके हाव भाव एकदम से बदल गए। उसने बेचैन होकर ध्रुव से पूछा, अगर अरमान बिल्कुल ठीक है, उसकी कंडीशन भी अच्छी है, उसकी धड़कन भी सही चल रही है, तो फिर उसे होश क्यों नहीं आ रहा? हाँ, और तुम रिपोर्ट्स देखने के बाद इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का क्या रीजन था? अब आहान ने भी अगले ही पल ध्रुव से यही सवाल किया। तब ध्रुव ने दर्द भरी आह भरते हुए सीरियस आवाज में बताना शुरू किया, देखिए अरमान भाई बिल्कुल ठीक हैं, उनकी बॉडी में सब कुछ और धड़कनें भी सही चल रही हैं, और अरमान भाई को 2 से 3 घंटे के अंदर होश भी आ जाएगा, लेकिन होश में आने के बाद वो हमारे अरमान भाई होंगे या फिर कोई और, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और नासमझी में सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन आकाश के लिए ये पहेली समझना मुश्किल हो गया और वो तुरंत रिएक्ट करते हुए ध्रुव पर बरस पड़ा, ये गोल गोल बातें क्यों कर रहा है? हाँ सही सही बता, हुआ क्या है, तू क्या छुपा रहा है हमसे? अब आकाश और सुमित की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और जल्दी ही कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दिखाते हुए उन्हें समझाने लगा, हमने अरमान भाई के खून और उनके पूरे शरीर की जाँच की है, इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि अरमान भाई के शरीर में एक ऐसा वायरस इंजेक्ट किया गया है जो ना कभी सुना गया है और ना कभी देखा गया है। ये वायरस किसी ऐसे खतरनाक आदमी ने बनाया है जो चाहता है कि अरमान भाई दर्द भरी जिंदगी जिए। उसने अरमान भाई की यादों के साथ छेड़खानी की है। इतना ही नहीं, अरमान भाई शायद अपनी कुछ अनमोल यादें भी खो चुके हैं। अब वो कितनी हैं, कैसी हैं और कहाँ तक हैं, ये सब हमें बाद में ही पता चलेगा। और मुझे लगता है शायद अरमान भाई आस्था भाभी को। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर सब लोगों के चेहरे का एकदम से रंग उड़ गया और उनका दिल धक से रह गया।
तभी आहान घबराहट में तुरंत चीखा, ये कैसी बातें कर रहा है? ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी बोल रहा है, इंसानी दिमाग के साथ ऐसे कैसे कोई छेड़खानी की जा सकती है? ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी अरमान भाई की याददाश्त ऐसे आधी कैसे जा सकती है यार? अगर जाती तो पूरी याददाश्त जाती ना, इस तरह आधी अधूरी याददाश्त जाने का क्या मतलब है? तभी ध्रुव आहान को धीमी आवाज में समझाते हुए बोला, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जानबूझकर अरमान भाई की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है और उनकी जिंदगी को बेरंग बेमकसद बना दिया गया है और उनकी जिंदगी की सबसे कीमती यादों से खेला गया है। मुझे लगता है भले ही वो ब्लैक डेविल सम्राट मर चुका हो, लेकिन मरने से पहले शायद उसने अरमान भाई के साथ कुछ किया है। सबको धीरे धीरे शक होने लगा कि ये हमला शायद जरूर सम्राट ने ही किया होगा। किसी के भी दिमाग में राजवीर का नाम ही नहीं आया, क्योंकि सबको यही लगता था कि शादी वाले दिन राजवीर को मार दिया गया था, क्योंकि उसी वक्त उसकी पत्नी के साथ उसकी लाश चलाने का हुक्म अरमान ने दे दिया था। हालांकि किसी ने कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की थी कि उस समय राजवीर के साथ असल में हुआ क्या था। क्या वाकई में उसकी लाश चलाई गई थी या नहीं, ये रहस्य किसी ने जानना जरूरी नहीं समझा। सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने खोए हुए थे कि किसी को ये एहसास ही नहीं रहा कि उनके जीवन में कोई दुश्मन बाकी रह गया है। फिलहाल ये सुनते ही आहान फिर सीरियस होकर बोला, लेकिन अगर इस तरह का कोई इंजेक्शन भाई को दिया गया है तो वो ठीक भी हो सकते हैं। तुम उसका एंटीडोट बना सकते हो, राइट? तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? किसी के दिमाग की यादों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? ये इंसानी दिमाग है या कोई एंड्रॉयड फोन जिसमें जो चाहो ऐड कर दो, जो चाहो डिलीट कर दो? इतना कहकर आहान चुप हो गया और ध्रुव की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी ध्रुव ने सबकी ओर गौर से देखकर कहा, शायद तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इंसानी दिमाग कोई एंड्रॉयड फोन नहीं है। हमारा दिमाग और हमारा दिल वही स्वीकार करता है जो हम चाहते हैं। अगर कोई बात हमें तकलीफ देती है तो हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं ताकि हम दर्द से बच सकें। बिल्कुल इसी तरह से किसी ऐसे इंसान ने इसमें दखल दिया है जो इस फील्ड को गहराई से जानता है। उसने ऐसा वायरस इंजेक्ट किया है जिससे अरमान भाई की कुछ यादें मिट गई हैं और उनकी मोहब्बत की यादें नफरत से बदल दिए गए हैं। सबके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और सब बेचैन होकर उलझी हुई नजरों से सिर्फ ध्रुव की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। आहान ने धीमे स्वर में पूछा, ध्रुव ये तो क्या कह रहा है यार? क्या अरमान भाई मुझे भी भूल जाएंगे? क्या मैं उन्हें याद नहीं रहूंगा? ध्रुव ने आहान के कंधों पर हाथ रखा और आह भरते हुए एकदम से जवाब दिया, ये तो मैं नहीं जानता आहान, पर एग्जैक्टली अरमान भाई क्या भूलेंगे क्या नहीं और उन्हें कितना कुछ याद रहेगा, ये सब हमें तभी पता चलेगा जब वो होश में आएंगे। फिलहाल तो बस यही दुआ करो कि उनकी याददाश्त ज्यादा ना गई हो और वो पहले की तरह ही नॉर्मल बिहेवियर करें। अब सबके दिलों में एक ही इंतजार था, 2 से 3 घंटे के अंदर बस अरमान के होश में आने का। दोस्तों कंजूसी मत करो यार, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैंने स्टोरी फिर से स्टार्ट की है, सो प्लीज आप लोग भी अपना सपोर्ट दें, प्लीज शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट से मोटिवेट करें।